ओम शांति। कला संस्कृति प्रभाग के अंतर्गत आपने कई विषयों पर बहुत सुंदर बातें सुनी। वर्कशॉप्स में भी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातों का डिस्कशन किया। अभी का जो विषय है ये है समय की गुह्य गति, काल चक्र की गुह्य गति। दुनिया में दो बातों की गुह्य गति मानी गई है, एक समय की गुह्य गति, दूसरी कर्मों की गुह्य गति। दोनों की गुह्य गति को जब तक मनुष्य समझ नहीं पाता तब तक उसके मन के अंदर कई प्रकार के सवाल बने रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, दुख संसार में क्यों आता है, मनुष्य जीवन में ऐसी घटनाएं क्यों होती है, ऐसे अनेक प्रकार के सवाल। और जब इन सवालों का जवाब नहीं मिलता है, खास करके एक सवाल मनुष्य के मन में जरूर उत्पन्न होता रहता है समय प्रति समय कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमने किसी का बिगाड़ा नहीं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसे कई प्रकार के सवालों का जवाब जब नहीं मिलता है तब जीवन के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है, तनाव बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। कई लोग यही कहते हैं समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। समय के विषय में बहुत सी बातें कही हुई है। किसी ने कहा समय हमसे समय प्रति समय एक प्रतिउत्तर की मांग करता है, और वो प्रतिउत्तर की मांग भी करने से पहले एक संकेत देता है। उस संकेत को समझना होता है, समय का संकेत क्या है। और जो समय के संकेत को समझ लेता है और उस अनुसार प्रतिउत्तर देता है, समय उसको जीवन में आगे बढ़ा देता है। परंतु जो समय के संकेत को समझ नहीं पाते हैं और उसके विपरीत दिशा में चलते हैं तो समय बड़ा कठोर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है इफ यू कैनॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज एंड दैट विल बी अ पेनफुल प्रोसेस। अगर समय के संकेत को नहीं समझा और परिवर्तन को नहीं अपनाया गया तो समय हमें मजबूर करेगा परिवर्तन होने के लिए, और वो समय बड़ा दर्दनाक होता है क्योंकि भीतर से इच्छा है नहीं, समय की मजबूरी है, करना पड़ता है, तो वो समय दर्दनाक है। तो ये समय हमसे क्या चाहता है? समय परिवर्तनशील है, हर वक्त हर घड़ी परिवर्तन होता चला जा रहा है। समय हमसे भी एक परिवर्तन की ही मांग करता है, लेकिन ये परिवर्तन कैसे करना है उसको समझना है, क्योंकि अगर इसको नहीं समझा गया तो समय को दूसरे शब्द में काल भी कहा जाता है। वो काल तो क्या, महाकाल का रूप भी धारण कर लेता है। और इसीलिए कई बार कई लोगों को समझाने पर भी जब नहीं समझते हैं तो बुजुर्ग यही कहते हैं कि समय की पछाड़े खाएगा, अपने आप समझने लगेगा। ये समझाने से नहीं सुधर पाएगा, समय की थपेड़े खाएगा तो अपने आप सुधर जाएगा। नहीं तो समय का पंछी उड़ता जाता है, वो हाथ तो किसी के आता नहीं, और समय बीत जाने के बाद अगर होश भी आया तो कोई काम का नहीं। इसलिए कहते हैं समय के साथ इस संसार में हर चीज परिवर्तनशील है। तभी कहा परिवर्तन कुदरत का नियम है, परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा, और इसीलिए समय हमसे भी एक परिवर्तन की ही मांग करता है। ये समय एक चक्र में चलता है। संसार के अंदर जितने भी बने हुए चक्र हैं, नित्य चलते रहते हैं। कोई चक्र की आदि या अंत नहीं है, चक्र माना ही जो नित्य चलता है। इस समय के चक्र के अंदर जितने भी चक्र बने हुए हैं वो भी नित्य चलते हैं। दिन और रात का चक्र देखो, नित्य चलता है। ऋतुओं का चक्र देखो, नित्य चलता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र देखो, वो भी नित्य चलता है। कुदरत की साइकिल को देखे, पानी वैपोरेट होता है, बादल बनते हैं, वो बादल बरसते हैं, फिर वो पानी समुद्र में जाकर के मिल जाता है, ये चक्र भी चलता ही रहता है। ऐसे ये काल चक्र भी नित्य चलता रहता है। हर चक्र के अंदर चार स्टेजेस होती है, जिसमें से उसको पास होना पड़ता है। जैसे दिन और रात की भी चार अवस्था है, सुबह दोपहर शाम रात्रि, रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है। ऋतुओं के चक्र में भी चार अवस्था है, ग्रीष्म बरसात शीतकाल वसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म के चक्र में भी चार अवस्था है, बचपन युवा गृहस्थ वृद्ध। इसी तरह ये काल चक्र में भी चार अवस्था है, जिसको कहा जाता है सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा? पुनः सतयुग आएगा, क्योंकि ये चक्र है। कई सोचते हैं कि इतना घोर पापाचार का युग कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा, कोई मनुष्य का काम नहीं है। जिस तरह घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है, कोई सारी रात भी बैठ जाए देखने के लिए कि भोर कैसे निकलती है, भोर कब निकल आती है पता भी नहीं चलता है। कुदरत की रचना में ऐसी सेटिंग है कि ग्रेजुअल परिवर्तन, और वो घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में बदल जाती है। इस तरह घोर पापाचार की दुनिया कलयुग भी, कोई चाहे या ना चाहे, परिवर्तन कुदरत का नियम है, परिवर्तन होना ही है। और इस तरह से ग्रेजुअल चेंज कलयुग से सतयुग की ओर बदल जाता है। लेकिन हर चक्र की एक अवधि है, एक ड्यूरेशन पीरियड है, जिसके अंदर ही उसको वो साइकिल कंप्लीट करना होता है। जिस तरह दिन और रात के चक्र की अवधि है 24 घंटा, उसी में सारा चक्र घूम जाता है। ऋतुओं के चक्र की अवधि है एक साल, उसी में वो चक्र घूम जाता है। इसी तरह ये काल चक्र की अवधि है 5000 साल। 24 घंटे वाला चक्र तो आंखों के सामने से गुजरता है, दिखाई देता है। ऋतुओं के चक्र का एक साल भी आंखों के सामने से गुजरता है, दिखाई देता है। लेकिन जब ये 5000 साल की बात आती है, वो एक लाइफ के अंदर दिखाई नहीं देता। इसलिए कई प्रकार के सवाल मन के अंदर आ जाते हैं, 5000 कहां से आया, किसने कहा, कहां लिखा हुआ है, क्या प्रूफ है, क्या सबूत है कि 5000 साल का चक्र है। वैसे देखा जाए तो प्रूफ किसी बात का नहीं है कि 24 घंटे कहां से आए, उसका कोई प्रूफ है। 60 सेकंड की एक मिनट बनी, 60 मिनट का एक घंटा बना, और इस तरह से 24 घंटे में ये दिन और रात के चक्र को बांट दिया। अगर 100 सेकंड की मिनट बनाते थे, 100 मिनट का एक घंटा बनाते थे तो चलता था या नहीं चलता था? चलता ही था। ड्यूरेशन कम हो जाता था, 24 घंटे के बदले कम हो जाते थे, लेकिन ड्यूरेशन तो उतना ही रहना था। चाहे उसको 24 घंटे में बांटो, 20 घंटे में बांटो या 25 घंटे में बांटो, वो तो कम जास्ती होने वाला नहीं था। लेकिन कभी हमने सवाल पूछा कि 24 घंटा ही क्यों, 20 घंटा क्यों नहीं, 60 सेकंड ही क्यों, 100 सेकंड क्यों नहीं? कभी नहीं, स्वीकार कर लिया। तो 24 घंटे का कोई सबूत नहीं है। 60 सेकंड किसने लाया, किस बेसिस पर लाया, उसका कभी प्रूफ नहीं मांगा, स्वीकार कर लिया और जीवन को सेट कर दिया। इसी तरह ऋतुओं का चक्र, एक साल, साल का चक्र कितने दिन का है? 365 दिन का। किसने कहा? मॉडर्न साइंस ने कहा 365 दिन लगते हैं पृथ्वी को चक्कर लगाने में, और हमने स्वीकार कर लिया और इस तरह से पूरा इंग्लिश कैलेंडर बन गया जनवरी से दिसंबर तक, और सारी दुनिया ने उसको स्वीकार कर दिया। कभी कोई सबूत मांगा? और वो इंग्लिश कैलेंडर पर सारा कारोबार चलाते हैं। अगर हिंदू कैलेंडर को देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर भी एक साइंस पर बना है, और उस जमाने का साइंस जब भारत ने विश्व को जीरो दिया था कैलकुलेट करने के लिए, अगर भारत जीरो देता ही नहीं था तो मॉडर्न साइंस भी कहां से डेवलप होता था? उस जमाने का साइंस। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो साल में कितने दिन है? हाँ? 3 साल के बाद अगर अधिक मास, एक पूरा मास बढ़ जाता है तो साल में कितने दिन होते हैं? हिंदू है ना हम सभी? हिंदू कैलेंडर में कितने दिन है नहीं मालूम? 354 दिन, 354 दिन। अब 354 सही या 365 सही? दोनों सही है, दोनों सही है। दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं। दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर पर, अपना त्योहार मुहूर्त जो निकालना है हिंदू कैलेंडर पर, है ना? दोनों कैलेंडर लेकर के चल रहे हैं। सही कौन सा है मालूम नहीं, दोनों ही एक साइंस पर बना हुआ है। कभी किसी ने सबूत मांगा? कोई सबूत नहीं मांगा कि इतना दिन का डिफरेंस कैसे हो गया। एक दो दिन का हो सकता है, इतने दिनों का डिफरेंस कैसे हो गया? और आज भी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब अमावस्या और पूर्णमासी बताते हैं तो पूरा समुद्र का पानी उछलता है, इतना एक्यूरेट चलता है। लेकिन फिर भी ये तो नहीं कहा कि इंग्लिश कैलेंडर सही है, मॉडर्न साइंस सही है, इसलिए हिंदू कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो। और ये भी नहीं कहा कि हिंदू कैलेंडर सही है तो इंग्लिश कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो। कोई सबूत नहीं मांगा, दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं। 24 घंटे का कोई सबूत नहीं, 60 सेकंड कहां से आए उसका कोई सबूत नहीं, 365 सही है, 354 सही, उसका कोई सबूत नहीं, और 5000 का सबूत चाहिए। जो आंखों से दिखता है उसका सबूत नहीं है, उसको स्वीकार कर सकते हैं तो 5000 को क्यों नहीं? वैसे 5000 का सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है? भारत के शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए, हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार, तो महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए? 5000 साल। और उस महाभारत के अंतिम पर्व में ये बात आती है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। है ना। तो आज घर घर में क्या होता है, महाभारत चलता है या नहीं चलता है? चलता ही है। तो महाभारत काल पुनः आ गया ना। महाभारत में जो वर्णित पात्र है, शकुनी जैसे पात्र आज के समाज में देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? महाभारत में तो एक ही शकुनी था, आज के दुनिया में हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा, है ना, उससे भी ज्यादा है। दुर्योधन जैसे पात्र, दुर्योधन जिसने धन का दुरुपयोग किया, ऐसे बच्चे आज के समाज में है या नहीं है? है, बहुत है। दुशासन जैसे पात्र आज के समाज में है या नहीं है? तो महाभारत काल पुनः आ गया ना। इस्लाम धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात है कि कयामत का समय 5000 साल में एक बार आता है, और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से कयामत का समय आ रहा है, हो गया 5000 साल। क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहते क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ, 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद नॉस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणियों के हिसाब से द गोल्डन ईरा इज टू कम, तो हो गया 5000 साल। मायन कैलेंडर के हिसाब से भी उनका चक्र है ही 5000 साल का। तो 5000 का वर्णन हर धर्म में किया गया है। कई लोग कहते हैं अरे शास्त्रों में तो लिखा है लाखों साल का एक एक युग है, और आप कहते 5000 साल में सारा चक्र घूम जाता है, कैसे हो सकता है? हम उनको एक ही बात पूछते, लाखों साल का एक एक युग है, उसका कोई सबूत है? कैसे मान लिया बिना सबूत के लाखों साल का एक एक युग है? 5000 का तो सबूत है ना हमारे पास, सभी धर्म के हिसाब से सबूत है। तो इसीलिए जब सभी धर्म एक बात कह रहे हैं तो 5000 साल का एक चक्र जिसमें चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चक्र कैसे चलता है उसको दिखाया गया है स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका हर शुभ कार्य के लिए लगाया जाता है, लेकिन अगर किसी से भी पूछा जाए कि स्वास्तिका का अर्थ क्या है तो क्या कहेंगे? एक शुभ की निशानी है, या कहेंगे हमारे पूर्वज करते हैं इसलिए करना है? लेकिन यही निशानी क्यों है स्वास्तिका की? स्वास्तिका निशान भी हर धर्म के अंदर अलग अलग रूप में दिखाया गया है। हिंदू धर्म में भी है, इस्लाम धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, क्रिश्चियन धर्म में क्रॉस के रूप में दिखाया है। चार भाग है, और चार भाग माना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 5000 साल का चक्र है तो हर युग 1250 साल का, और इसीलिए इसको शुभ की निशानी मानी गई है, क्योंकि स्वास्ति का शब्द संस्कृत के सुअस्ति शब्द से निकला है। सुअस्ति, सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है, यानी ये काल चक्र सदा ही शुभ है, इसकी कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। इसीलिए गीता के सार में ये बात लिखी हुई है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा, तुम निश्चिंत रहो, तीनों घड़ी अच्छी है, कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। जो बीत चुकी वो भी अच्छी, जो चल रही है वो भी अच्छी, और जो आने वाली है वो भी बहुत अच्छी है। और इसीलिए हर शुभ कार्य पर स्वास्तिका का निशान निकालते हैं कि ये घड़ी भी शुभ है, डू नॉट डाउट, कि पता नहीं ये सही है या नहीं है, ये घड़ी अच्छी है या बुरी है। डोंट डाउट, संशय नहीं लाओ। ये घड़ी भी शुभ है, बुरा कुछ है ही नहीं। ये समय का चक्र पूरा ही शुभ है, इसलिए हर शुभ कार्य पर स्वास्तिका निकालते हैं और इसीलिए उसको शुभ की निशानी श्री गणेश कहते हैं कि इसी से ही कार्य आरंभ करो, इसी विचारधारा से कि जो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा, जो हुआ वो भी बहुत अच्छा, जो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा और जो आने वाला है वो भी बहुत अच्छा। लेकिन तब कई बार कई लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं, कई घटनाएं तो ऐसी होती है जिसको देख करके लगता है बहुत बुरा हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसको अच्छा कैसे समझे। मुझे याद आता है कि एक बार एक भाई थे, उनके पैरों में कार एक्सीडेंट हुआ तो दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। हॉस्पिटल में थे, जब हमें पता चला तो हम मिलने गए। अब जाएंगे तो क्या कहेंगे, कुछ सहानुभूति के ही शब्द कहेंगे। तो जब हमने देखा उनको तो हमने कहा भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ये बात कही भाई को बड़ा गुस्सा आया, भगवान का नाम नहीं लो मेरे सामने, भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करता है। बड़ा आश्चर्य लग रहा था क्योंकि कोई नास्तिक नहीं था, भगवान में आस्था रखने वाले उनके मुख से ऐसी बातें निकल रही थी। आखिर हमें महसूस होने लगा कि जितना ज्यादा देर यहां खड़ा रहेंगे ये भाई का गुस्सा बढ़ता जाएगा, तो बेटर है हम बाहर निकल जाए। तो हम बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए तो उनकी पत्नी ने देखा, वो आकर कहने लगी बहन जी कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो आप क्षमा कर देना। मैंने कहा कि इतना अच्छा भाई, भगवान में आस्था रखने वाला, एक एक्सीडेंट क्या हुआ, वो तो कल ठीक हो जाएंगे, फिर इतना भगवान के नाम से क्यों गुस्सा हो रहे हैं कि भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करते। बार बार एक ही सवाल कर रहा था, बहन जी मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब वो तो हम क्या जाने, लेकिन जीवन तो बच गई, ये तो शुक्र करो। लेकिन ये बात उसको हजम नहीं हो रही थी, तो उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, क्या बात है फिर। तब उसने बताया कि वो एक कोई लायंस का या रोटरी का गवर्नर था और हमेशा समाज के लिए बहुत अच्छा काम करता था, वो सभी जानते थे उसको। कोई भी उसके पास किसी भी तरह की मदद मांगने चला जाता था वो हमेशा उसको मदद करता था, अच्छे अच्छे समाज सेवा के प्रोजेक्ट्स चलाता था। अब उसका टेन्योर पूरा हो रहा है और जब टेन्योर पूरा होता है तो कोई इंटरनेशनल गैदरिंग होती है जहां सारी दुनिया के गवर्नर्स इकट्ठे होते हैं और उसको भी उस गैदरिंग में जाना था और वहां उसका सम्मान होना था, अवार्ड मिलना था उसको, क्योंकि उसने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया था। अब 10 दिन पहले उसको ये एक्सीडेंट हो गया। अब 10 दिन में तो ठीक होके नहीं जा सकता है, तो इसीलिए जब उसके सामने वो सारी बात आती थी, अरे इतने बड़े बड़े लोग वहां आएंगे, उन सबके बीच में मेरा सम्मान होता था, मुझे अवार्ड मिलता था, मेरा फोटो निकलता था, वहां से जब मैं वापस आता था तो यहां मुझे कैसे रिसीव किया जाता था, अब कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो ये बात हजम नहीं हो रही थी। और इसीलिए कहता है कि मैंने कर्म किया, फल लेने का समय आया, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरे हाथ से फल क्यों छीन लिया, बार बार मेरे लिए ये ओकेजन तो आने वाला नहीं है। अब उसके लिए हम क्या कहते, हमारे सामने सामने किसी ने उसको कह दिया भगवान को क्यों इतना गाली देता है, कर्म का हिसाब किताब भी तो हर एक को अपना भोगना ही पड़ता है। उसको और गुस्सा आया, कर्म का हिसाब किताब मैं कहां मना करता हूं, लेकिन वहां से आने के बाद भगवान हिसाब किताब नहीं ले सकता था, पहले ही लेना था। अब क्या कहते, आखिर हम तो वहां से चले गए। 8-10 दिन के बाद गुरुवार का दिन था, सोचा चलो बाबा का प्रसाद लेके जाते हैं, हो सकता है भाई की मानसिक स्थिति ठीक हुई हो। जैसे ही गए तो और कोई नहीं थे, वो और उसकी पत्नी दो ही बैठे थे। हमें देखकर कहने लगा, आओ बहन जी आओ, देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। क्या हुआ? तो न्यूज़पेपर उठाकर दिखा, जिस फ्लाइट में वो जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया, सारे लोग मर गए। इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा फिर कि बहन जी मैंने किसी का बुरा नहीं किया था ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। सवाल उसका 10 दिन पहले था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और आज खुद ही जवाब देता है, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। भगवान कितना अच्छा है। और फिर इतनी अच्छी बातें करने लगा कि बहन जी आज मैं वही फ्लाइट में होता था, अवार्ड तो मिलना ही नहीं था, जीवन भी चला जाता था, लेकिन भगवान कितना अच्छा है, आज मुझे महसूस हो रहा है कि भगवान ने मुझे सबसे बड़ा अवार्ड दिया है, एक नया जीवन दान दिया है। जब ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी ने मुझे कहा, बहन जी ये 10 दिन मेरे कैसे गए हैं वो मैं बताऊं आपको, सबसे बुरे दिन गए ना मेरे गए। उसने तो भगवान को कितनी गाली दी होंगी पता नहीं, है ना, लेकिन एक एक को बाहर ले जाकर के हाथ जोड़ जोड़ करके माफी मांगना पड़ता था, क्योंकि हरेक के अंदर सहन शक्ति एक जैसी तो नहीं होती थी। कभी कभी कई लोग इतने अपसेट हो जाते थे इनकी बातों से कि नाराज होकर के जाने लगते थे। मुझे एक एक को बाहर ले जाकर के हाथ जोड़ जोड़ करके माफी मांगनी पड़ती थी, आप इसकी बात का बुरा नहीं मानना, इस समय इसकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना। कहते मैंने अपने कर्मों के लिए इतनी माफी किसी से नहीं मांगी जितना इसके कर्मों के लिए माफी मांगनी पड़ रही है। मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन ये 10 दिन गए। इतना टेंशन हो जाता था मुझे, क्योंकि कई जगह संबंध खराब होने जैसी स्थिति आ जाती थी, उस सिचुएशन को संभालने में मुझे इतना स्ट्रेस हो जाता था, मैं क्या बताऊं। मैंने कहा बहन जी शुक्र करो कि समय ने 10 दिन के अंदर पर्दा खोल दिया कि क्या अच्छा समाया हुआ है। जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती है जिसका पर्दा समय 1 साल के बाद खोलता है। वो साल कैसा जाता है सिर्फ इस एक बात का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न होने कारण कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, इस बात का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न होने के कारण कितने दुखी होते हैं, कितनी गाली देते हैं भगवान को, कितना स्ट्रेस में आते हैं, कितने लोगों से संबंध खराब कर बैठते हैं, कितना गुस्सा चिड़चिड़ापन आता है, जबकि गीता में ये बात कही हुई है। कई लोगों ने घरों में लगाया होगा लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं। हर बात एक सवाल रहता है, वाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों, जबकि आंसर है उसके बावजूद भी। तो इसीलिए जो होता है वो अच्छा ही होता है, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा है। अब ये काल चक्र को अगर देखें तो ये काल चक्र कैसे चलता है उसको स्वास्तिका के रूप में दिखाया है। चारों भाग एक समान है, कब शुरू हुआ मालूम नहीं, जैसे दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ पता नहीं, लेकिन उसका पहला पहर सुबह को माना जाता है। ऐसे ये काल चक्र भी कब शुरू हुआ पता नहीं, लेकिन उसका पहला पहर सतयुग को माना जाता है। जहां स्वास्तिका का हाथ का पोजीशन ये है आशीर्वाद, जहां हर आत्मा ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त की हुई स्थिति में थी, ब्लेसेड सोल थी, सत्यता का युग, जहां संपूर्ण सत्यता थी, सतो प्रधानता थी, इसी युग को दूसरे शब्द में कहा जाता सूर्य वंश। कि जैसे सूर्य की कलाएं संपूर्ण है, ऐसे आत्माएं भी संपूर्ण अवस्था में थी, परफेक्ट स्टेज स्टेज ऑफ परफेक्शन थी। इसे युग के लिए बहुत सुंदर बात बाइबल में कही हुई है कि परमात्मा ने जब ये पहला पहर रचा था तो कैसा था। तो जेनेसिस चैप्टर 1 में कहा गया है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने मनुष्य को अपनी कृति में बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, कि जैसे परमात्मा सर्व गुणों में संपन्न है, ऐसी उसकी फर्स्ट क्रिएशन जो थी, पहला पहर जो था, वो भी संपूर्ण था। तो मनुष्य को ही मेड मैन इन हिज ओन इमेज, मनुष्य को अपनी कृति में बनाया। हर धर्म में ये लाइन किसी न किसी रूप से आती है। किसी ने कहा, हिंदू धर्म में कहा गया, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। क्योंकि सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग में मनुष्य थे, इसलिए कहा कि मनुष्य को अपनी कृति में बनाया, नर से सो नारायण बनाया। इसलिए कहा जाता, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। भगवान को मनुष्य से देवता करने में कोई वार नहीं लगती है। तो हर धर्म में किसी न किसी रूप में ये बात कही हुई है। वो दुनिया कैसी थी, जहां संपूर्ण सतो प्रधानता, पवित्रता थी, प्रकृति के अंदर, पशु पक्षी और मनुष्य के अंदर, जहां के लिए कहा जाता शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे, इतना अहिंसा का युग था, संपूर्ण सुख शांति, जहां हर प्रकार की समृद्धि हरेक के जीवन में थी। वो युग ऐसा था जहां पवित्र आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है और कोई न कोई देवी या देवता का रूप ले लेती है, और इस तरह से पूरी देवी दुनिया थी। उस दुनिया का राज्य करने वाला कौन था? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। कैसे पता चला कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य? तो श्री नारायण के साथ हमेशा शब्द जुड़ता है, सत्य नारायण या सूर्य नारायण, सत्य नारायण जो सतयुग के राज्य करता थे, सूर्य नारायण यानी जो सूर्यवंशी थे, संपूर्ण थे। लेकिन जैसे जैसे ये काल चक्र घूमता है और संसार में दूसरा भाग आता है काल चक्र का, त्रेता युग। त्रेता माना जहां थोड़ी त्रुटि आ गई, 16 कला संपूर्णता जो थी वो धीरे धीरे 14 कलाधारी बने। उस युग को कहा जाता है चंद्रवंश, जहां स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड साइड पर नीचे आ जाता है, यानी उस परफेक्शन की स्टेज में नहीं, 2 कला कम हो गए, 16 कला से 14 कलाधारी बन गए। पवित्रता, सुख शांति, समृद्धि उस दुनिया के अंदर भी है, लेकिन सतयुग जितनी परफेक्शन वाली नहीं है। उस युग में राज्य करने वाले कौन थे? तो श्री राम और श्री सीता का राज्य था। कैसे पता चला कि श्री राम और श्री सीता का राज्य था? तो श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है श्री रामचंद्र, सूर्य नारायण का, श्री रामचंद्र। नारायण के साथ नारायण चंद्र नहीं कहते, और श्री राम के साथ सूर्य राम नहीं कहते, रामचंद्र। इसलिए दिखाते कि श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, सूर्य का तिलक लगाते थे, परंतु जहां से श्री राम आए वहां से दूसरा युग प्रारंभ हो गया, जिस युग को कहा जाता त्रेता युग, या आज भी जिसको राम राज्य के रूप में लोग याद करते हैं और स्वप्न देखते हैं कि राम राज्य हो भारत। कि सतयुग जितनी परफेक्शन न भी ला सके, लेकिन कम से कम राम राज्य जैसा तो बनाए, जहां सुखी थी राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार। यही गायन है कि सब सुखी थे जहां पर। लेकिन तब मनुष्य के मन में प्रश्न आता है, कि ये देवी देवताओं का जो दो युग चला, जिसके लिए भारत में पॉपुलेशन दिखाते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं थे, वो देवी देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जो 16 कला से 14 कलाधारी बने, सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ी। कोई कर्म की बात नहीं है, लेकिन संसार के अंदर हर चीज एक ही स्थिति में नहीं पाई जाती है। विज्ञान के अंदर थर्मोडायनामिक्स का सेकंड प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एंट्रोपी, और लॉ ऑफ एंट्रोपी को डिफाइन किया गया है कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। हर चीज पहले सुव्यवस्थित होती है, फिर अस्त व्यस्त हो जाती है। मकान नया बनाओ, खंडर अपने आप बन जाता है, खंडर बनाया नहीं जाता है। कोई भी चीज ऊपर से नीचे अपने आप आती है, नीचे से ऊपर उसको चढ़ाना पड़ता है। और कोई भी चीज सदा स्थाई एक ही स्थिति में नहीं रह सकती है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा पूर्णमासी कितना दिन होता है? एक घड़ी। दूसरी घड़ी से फिर उसकी अमावस्या की ओर यात्रा शुरू हो जाती है, और अमावस्या में कितनी देर? एक घड़ी। फिर से उसकी संपूर्णता की ओर यात्रा प्रारंभ रहती है। चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। परिवर्तन एक नित्य प्रक्रिया है, और इसीलिए संसार में जो कहा जाता परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा। इस परिवर्तन की प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता है, कोई स्टॉप नहीं कर सकता है। इसी तरह 16 कला संपूर्ण जो थे, क्योंकि 16 फिगर परफेक्शन का है। कोई बात 100% करेक्ट होती है तो क्या कहते, 16 आनी सच है। इसी तरह संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा 16 कला संपूर्ण, तो 16 फिगर परफेक्शन का है। और परफेक्शन प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे अमावस्या की ओर। तो ये कुदरत की एक नेचुरल चेंजिंग प्रोसेस है। तो सत्युग से त्रेतायुग थोड़ी त्रुटि जो आई, 2 कला कम हुई, त्रेता से द्वापर जहां स्वास्तिका का हाथ लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न हो जाता है। सत्युग में इस पोजीशन में था, द्वापर में जब आए तो ये पोजीशन हो गया। ये पोजीशन माना मांगना। सत्यता का युग, सत्य जहां है वहां एकता है, एकता का युग था। तो सत्युग त्रेता युग को स्वर्गीय समय कहते हैं। सोने की चिड़िया थी भारत, यही गायन करते हैं। लेकिन जब द्वापर आया तो वो एकता समाप्त हुई। द्वापर यानी दोपुर आरंभ हो गया। सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगा, और जब असत्य मिक्स होने लगता है तो क्लैशेस तो होते ही है, मतभेद शुरू होता है, लड़ाई झगड़ा आरंभ होता है। और उस मतभेद के कारण दुख और अशांति शुरू होती है। तब कहा जाता है दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, अगर सुख में करे तो दुख काहे को। यानी सत्युग और त्रेतायुग जो सुख का समय था, वहां किसी ने ईश्वर को याद ही नहीं किया। अगर वहां याद करते थे तो दुख काहे को होता था। इसीलिए द्वापर से दुख प्रारंभ हुआ। सत्यता और स्वर्ग का सुख यहां समाप्त हो गया। और जब दुख प्रारंभ होता है तो ईश्वर से मांगना शुरू करते हैं, हे प्रभु शांति दो, हे प्रभु सुख दो, हे प्रभु ये दो वो दो, आनंद दो। तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, मांगना शुरू करते हैं। इसीलिए उसका पोजीशन यही है मांगने का। अब जब मांगना आरंभ करते हैं, दुख आरंभ हुआ, परमात्मा का परिचय नहीं है, परमात्मा कौन है मालूम नहीं। इसीलिए जो देवी देवताएं होकर के गए थे उसकी मेमोरीज जो ताजा थी, उसी को भगवान मान लिया। जिस तरह आज की दुनिया के अंदर कई संतों के भी मंदिर बनते हैं, और अगर पूछा जाए कि ये संत तो हमारे जैसे मनुष्य ही थे, इसी युग में हुए, उनके मंदिर क्यों बनाए हुए, तो लोग क्या कहते हैं, हमसे वो श्रेष्ठ थे। शिरडी के साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, लेकिन आज उनके मंदिर बनते हैं, थे तो हमारे जैसे ही, इसी युग में पैदा हुए, फिर उसके मंदिर क्यों बन रहे हैं, तो लोग यही कहते हैं हमसे वो श्रेष्ठ थे। इसीलिए इसी तरह द्वापर युग में जो आत्माएं आई उनसे श्रेष्ठ वो सतयुग और त्रेता युग के देवी देवताएं श्री राम, श्री सीता, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, तो उनको ही भगवान बना करके, उनके मंदिर बना करके उनकी पूजा करना आरंभ किया। और इस तरह से द्वापर युग के अंदर जहां दुख शांति शुरू हुई, जहां मनुष्य आत्माएं अपने ही कर्मेंद्रिय का गुलाम बना, तो उस पूज्य अवस्था से पुजारी बन गया और अपने ही पूर्वजों के मंदिर को बना करके पूजा करना आरंभ कर दिया, क्योंकि जो श्रेष्ठ स्थिति थी उससे नीचे उतर गए, देह अभिमान के वश हो गए, अहंकार के वश हो गए, और इसी युग में शास्त्र का निर्माण हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ, पूजा के विधि विधान बनाए गए, रीत रस्म रिवाज बनाए गए, और इस तरह से द्वापर युग चलने लगा। भगवान का आने का वक्त नहीं था, क्योंकि अभी तो दुख प्रारंभ हुआ, इसलिए उनका आने का वक्त नहीं था। इसलिए इस समय में कुछ महान आत्माओं को इस संसार में भेजा गया। कई लोग कहते हैं कि इस संसार में इसी समय में श्री कृष्ण भी तो आते हैं गीता का ज्ञान सुनाने के लिए। अगर श्री कृष्ण आए द्वापर युग में जब दुख प्रारंभ हुआ तभी और गीता का ज्ञान दिया, तो गीता में जब ये कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य, अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं अवतरित होता हूं, भगवान वाच। तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया, तो क्या गीता के ज्ञान से घोर अधर्म के युग की स्थापना हुई? अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करनी थी तो कलयुग तो घोर अधर्म का युग हुआ, तो गीता के ज्ञान से क्या घोर अधर्म के युग की स्थापना हुई? क्या आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है? लेकिन उस समय में क्योंकि भगवान का आने का वक्त नहीं था, वो तो घोर अधर्म के समय पर आता है, और घोर अधर्म का समय कौन सा? कलयुग है। इसलिए द्वापर में कुछ महान आत्माएं संसार में अवतरित होती है, और भारत से बाहर तीन महान आत्माएं इस संसार में आती है। सबसे पहले इब्राहिम आते हैं जो इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं, उसके बाद बौद्ध आते हैं जो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं, और क्राइस्ट आते हैं जो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। किसी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा हम भगवान का पैगाम लेकर के आए हैं। भारत से बाहर ये तीन महान धर्म पिताएं आए, और भारत में अनेक महापुरुष हो गए, हर स्टेट में कोई ना कोई ऐसी महान आत्माएं जन्म लेती है। किसी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, हर एक ने यही कहा हम भगवान का पैगाम लेकर के आए हैं। इसलिए कोई भी धर्म के उस ओरिजिनल सिद्धांत अगर देखा जाए तो अलग नहीं, हर धर्म अच्छी बातें ही करता है। ओरिजिनल जो सिद्धांत है, कोई धर्म पाप करना नहीं सिखाता, कोई धर्म बुराई करना नहीं सिखाता, कोई धर्म झूठ बोलना नहीं सिखाता है, ओरिजिनल सिद्धांत एक जैसे हैं। लेकिन जिस समाज में ये लोग गए, उस समाज की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने जो महसूस किया, उस अनुसार उन्होंने प्रचार किए। वो प्रचार अलग अलग हो गए। जहां पर इब्राहिम गए थे, उस समाज की व्यवस्था को देख करके उन्हें महसूस हुआ कि जीवन जीने के सिद्धांत इन्हें बनाकर देना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने पवित्र धर्म पुस्तक में जीवन जीने के सिद्धांत दिए, लॉज टू गवर्न ह्यूमन लाइफ। लेकिन अफसोस, उस समाज के लोगों ने कम समझा। इसी तरह जहां महात्मा बुद्ध गए थे, उस समाज की व्यवस्था कैसी थी, उन्होंने दो बातें देखी जिस पर उन्होंने अपने प्रचार किए। कौन सी दो बातें देखी? पहली बात देखी, मनुष्य जीवन में दया नाम की चीज नहीं है और कर्म भ्रष्ट होने लगे हैं। तब उन्होंने अपने प्रचार में कहा, दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, कर्म ही धर्म है, कर्म अच्छे करो। लेकिन अफसोस, उस समाज के लोगों ने भी इस बात को समझा नहीं। महात्मा बुद्ध को बहुत मानते हैं, महात्मा बुद्ध की नहीं मानते हैं। जैसे भारतवासी गीता को बहुत मानते हैं, गीता की नहीं मानते हैं, है ना? और इसीलिए आज आप अगर कोई भी ईस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ, चाइनीज कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में चले जाओ, क्या खाते हैं लोग? क्या खाते हैं लोग? जो दुनिया में कोई नहीं खाते है ना, वो ये लोग खाते हैं। आप सोचेंगे बहन जी को कैसे पता। कुछ समय पहले मैं हांगकांग चाइना के तरफ गई थी, तो जैसे बंबई की चौपाटी बहुत मशहूर है, ऐसे हांगकांग की चौपाटी भी बहुत मशहूर है। हमारा एक कार्यक्रम था एक आइलैंड पर, बोट लेकर हमें जाना था, तो गाड़ी पार्क करके उस चौपाटी से गुजरना पड़ा। जब मैं 10 मिनट उस चौपाटी से गुजरी, तो वहां का जो नजारा देखा मुझे कभी भूलता नहीं। छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए, कहां देखा तो रंग बिरंगी सांप लटक रहे हैं, है ना? वो सांपों को फ्राई किया जा रहा है, लोग खड़े होकर खा रहे हैं। कहां देखा तो बिच्छू की सब्जी बनी जा रही थी, कहां देखा तो कुत्ते का गोश्त उबल रहा था, कहां देखा तो कॉकरोच की चटनी पीसी जा रही थी। उस दृश्य देख करके मुझे महसूस हुआ कि 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने क्यों कहा था कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो। लेकिन अफसोस, इस समाज के लोगों ने इस बात को समझा नहीं। और इसलिए आज तो अगर आप ताइवान के अंदर जाएंगे, ताइवान के अंदर मनुष्य के बच्चे, छोटे छोटे 10 दिन के 15 दिन के बच्चों को होटल वालों को बेचा जाता है $2000 में, और उन बच्चों को कैसे फ्राई किया जाता है, कैसे पकाया जाता है, बेक किया जाता है, उसका सूप बनाया जाता है। और आज मनुष्य हैवान बनकर के अपने बच्चों को खाने में हिचकिचाता नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन ये बच्चों के ह्यूमन राइट्स कहां गए मालूम नहीं। कोई एक्शन नहीं, कोई आवाज नहीं। और इस तरह से जो कहा, प्राणी मात्र के प्रति तो दया भाव है नहीं, लेकिन आज मनुष्य मनुष्य के प्रति भी कोई दया भाव नहीं रखता। इसी तरह जहां क्राइस्ट गए थे, वहां के समाज की व्यवस्था कैसी थी, तो क्राइस्ट ने भी दो बातों को देखा जिस पर उसने अपने प्रचार आरंभ किए। कौन सी दो बातें देखी? कि मनुष्य को मनुष्य के प्रति नफरत है और इतना झूठ बोलने लगा है। तब क्राइस्ट ने इन्हीं दो बातों पर अपना प्रचार किया, सत्य ईश्वर है, प्रेम ईश्वर है। ये दो वैल्यूज को ईश्वर के बराबर का दर्जा दे दिया उसने। लेकिन जो प्रेम और सत्यता का संदेश देने वाले थे, उनके साथ क्या सुलूक किया? उसी को क्रॉस पर चढ़ा दिया गया, कितना नफरतपूर्ण व्यवहार किया गया हम सभी जानते हैं। सारी दुनिया को दिखा दिया कि अगर हम अपने धर्म पिता को नहीं बख्शते हैं तो बाकी किसको बख्शेंगे। और इसलिए जहां पर भी ये वेस्टर्न दुनिया के लोग चले गए, गए थे व्यापार के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद क्या किया, झूठ का प्रयोग करके नफरत के बीज बोकर राजा को राजाओं से लड़ाया, राजाओं को प्रजाओं से लड़ाया और पूरे देश का राज्य अपने हाथ में ले लिया। और राज्य देने वक्त क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, नफरत के बीज ऐसे बो दिए कि किसी बात पर समाधान ही नहीं होता है। कहां ईस्ट वेस्ट कर दिया, कहां नॉर्थ साउथ कर दिया, कहां दो देश ही अलग बना दिए। आज दुनिया में 350 लड़ाइयां चल रही है, उन्हीं देश की बॉर्डर्स पर चल रही है जिस देश का दो टुकड़ा हुआ है। और आज आप सभी जानते हैं कोरिया की जो हालत है, नॉर्थ साउथ कोरिया किस तरह एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं, भाई भाई जैसे एक दूसरे के विपरीत हो गए। और तीसरा विश्व युद्ध के संकेत मिल रहे हैं, इतनी तैयारियां वहां हो गई। भावार्थ ये कि इन महान पुरुषों को बहुत मानते हैं, उन्होंने जो कही हुई बातें हैं उनको नहीं मानते हैं। और इसलिए ये दुनिया की हालत क्या हो गई, चौथा युग आ गया जिसको कहा कलह क्लेश वाला युग, जहां घर घर के अंदर कलह क्लेश हो गया, अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। और इसीलिए इस कलयुगी दुनिया को कहा ही जाता है, दूसरे शब्द में रावण राज्य है। त्रेता युग में जब श्री राम का राज्य था तब रावण नहीं था, और आज जब रावण राज्य है तो राम राज्य नहीं है। इसको रावण राज्य क्यों कहा गया, क्योंकि रावण के लिए यही बताते हैं कि रावण कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं हुआ, 10 इंसानों जितनी बुद्धि थी उसके पास। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, ब्रह्मास्त्र उसको प्राप्त थे। रावण जैसा धनवान भी कोई नहीं, पूरी सोने की लंका थी। और रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा, शिव भक्त था, खूब तपस्या करता था। जीवन की जो चार आवश्यकता मानी जाती है, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति, चारों ही रावण के पास थी। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी उसका सर्वनाश क्यों हुआ, दो बातों की कमजोरी थी। और वो दो बातें थी, अहंकार चरम सीमा पर, और दूसरा चरित्र भ्रष्टता आ गई थी। ये दो बातों के कारण ही उसका सर्वनाश हुआ। ठीक इसी तरह आज की दुनिया भी रावण राज्य है। कैसे, तो सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी है मनुष्य। मनुष्य ऊंची जाति का है, मनुष्य जैसा विद्वान कोई नहीं। आज विज्ञान इतना चरम सीमा पर पहुंच गया है, 10 इंसानों जितनी बुद्धि है मनुष्य के पास। कंप्यूटराइज्ड जमाना हो गया, हवा में उड़ने लगा है, समुद्र के नीचे तैरने लगा है, जैसे दिखाते हैं आकाश मार्ग से असुर लोग ट्रैवल करते थे, समुद्र के नीचे से ट्रैवल करते थे। तो आज मनुष्य ने भी अपनी बुद्धि की शक्ति से हवा में उड़ने लगा है, नीचे पानी के नीचे तैरने लगा है, विज्ञान से बौद्धिक क्षमता उसकी हो गई इतनी। मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, मिसाइल पावर है, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, पृथ्वी अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, सब अस्त्र प्राप्त है उसको। मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं, गली गली में मंदिर मिलेंगे आज, और मनुष्य जैसा धनवान भी कोई नहीं। रात्रि के समय में बड़े शहरों का नजारा देखा जाए तो सोने की लंका से कम चमकदार भी नहीं है। पूरी ग्लैमरस वर्ल्ड है, एकदम ग्लिटरिंग वर्ल्ड। जीवन की जो चार आवश्यकता है, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति, वो चारों ही आज मनुष्य के पास भी उपलब्ध है। लेकिन आज मनुष्य भी किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? अपने ही सर्वनाश की ओर। क्योंकि आज मनुष्य जीवन में भी यही दो बातों की कमजोरी आ गई है, अहंकार चरम सीमा पर है और चरित्र भ्रष्टता, जिस कारण वो भी अपने सर्वनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये रावण राज्य नहीं तो और क्या है? ऐसा जब समय आ जाता है जहां हर व्यक्ति अपने आप को बंधन में महसूस करता है, किसी को व्यसनों का बंधन है, बुरी आदतों का बंधन है, बुराइयों का बंधन है, उसी में जकड़े हुए हैं, हर प्रकार की अधर्म में चरम सीमा, जहां मनुष्य आत्मा अपने ही कर्मेंद्रिय का गुलाम, बुराइयों का गुलाम हो गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, स्वार्थ के लेकर के उसके चेहरे को तो देखो कैसा हो गया है, इतना विकृति आ गई है, विकृत चेहरा हो गया है। जो दिव्यता थी वो समाप्त हो गई, विकृति आ गई, न खुद का परिचय है न खुदा का परिचय है, और इसलिए उस परमेश्वर को भी कहां कहां ढूंढ रहा है। कहां देखो तो नदियों की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो सूर्य की पूजा कर रहा है, कहां देखो वृक्षों की पूजा कर रहा है, कहां देखो जानवरों की पूजा कर, किस किस की पूजा करने लगा है। इसी को घोर अधर्म कहा जाता है, जहां अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लेकिन जब ये बात कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं अभी तो कलयुग छोटा बच्चा है, अभी तो 4,32,000 साल पड़े हैं शास्त्र के अनुसार। सोचने की बात है कि अगर 4,32,000 साल पड़े हो, 4 लाख तो छोड़ो, 32,000 भी छोड़ो, खाली 32 साल ले लो, क्या ये दुनिया 32 साल चल सके ऐसी स्थिति में भी है? वो कवि प्रदीप जी का गीत याद आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, है ना? काल चक्र के घूमते घूमते कितना बदल गया इंसान। और एक गीत याद आता है, श्री रामचंद्र कह गए सिया से, क्या कह गए, ऐसा कलयुग आएगा जहां क्या नहीं होगा। उस कलयुग के अंतिम लक्षण दर्शाए गए हैं उस गीत के अंदर, और वो सारे लक्षण इस समय मौजूद है, दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अभी भी कलयुग बच्चा है या थोड़ा सा बचा है? क्या कहेंगे, बच्चा है या बचा है? थोड़ा सा, थोड़ा सा बचा है, क्योंकि साइंस भी अभी अपने वैज्ञानिक संशोधन के आधार पर ये सबूत देने लगा है कि ये संसार ज्यादा समय नहीं चल सकता है। जिस तरह पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगी है, ओजोन लेयर्स का छेद बढ़ता जा रहा है, पूरा ऑस्ट्रेलिया खंड जितना छेद हो गया है ओजोन लेयर का, जिस कारण सूर्य की डायरेक्ट रोशनी आ रही है, बर्फ पिघलता जा रहा है, और इसलिए ऑक्सीजन का सोर्स भी कटता जा रहा है। ऐसी जब प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति आ गई है, इस साल दोहा के अंदर कॉन्फ्रेंस थी फरवरी में, और उस कॉन्फ्रेंस के समय सारे वर्ल्ड के, पृथ्वी के साइंटिस्ट सारे इकट्ठे हुए थे, और उस कॉन्फ्रेंस में ब्रह्मा कुमारीज भी थे पार्टिसिपेट करने के लिए। उस कॉन्फ्रेंस में यही साइंटिस्टों ने अपनी चिंता व्यक्त की कि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, ये पृथ्वी का तापमान सिर्फ 4 डिग्री अगर बढ़ जाए तो किस तरह की हालत इस पृथ्वी की हो सकती है और पृथ्वी के वासियों की हो सकती है, आम आदमी उसकी कल्पना तक नहीं कर पा रहा है, इतना अज्ञान है। अब 4 डिग्री तापमान बढ़ने में कितना साल लगेगा? 4,32,000 साल लगेंगे? नहीं। इसीलिए कहा जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची है। और इसलिए आज बड़े से बड़े पैमाने पर भूकंप महसूस होते हैं, सुनामी लहरें उठ रही है, जिस तरह ज्वालामुखी फट रहे हैं, चक्रवात तूफान आ रहे हैं, ये प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति के कारण ही ये सर्जित है। और जितने भी मिसाइल्स बनाए हैं वो रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं ना, सारे कंप्यूटराइज कंट्रोल है, बटन दबाने की देरी पर है। अब जो व्यक्ति सारा दिन अगर वो कंप्यूटर के पास बैठा हो, कहीं से मिसाइल आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, एक दिन अगर घर में झगड़ा हो गया, टेंशन हो गया, तो क्या करेगा? सोचेगा दबा दो बटन, खत्म करो खेल, मरो और मारो सबको। कितनी देर लगेगी? बस। कई लोग हमें पूछते फिर ये दुनिया कब बदलेगी, तो हम कहते बस वो एक पागल व्यक्ति की जरूरत है उस कंप्यूटर के पास, अगर वो बैठ जाएगा हा? या उसके दिमाग पर अगर शैतान हावी हो गया तो क्या होगा, खत्म होगी। और इसलिए जो भगवान ने वायदा दिया है कि ऐसे समय पर मैं इस संसार में अवतरित होता हूं, संसार में भी, भारत में भी एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के, ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके अब सभी को कहता हूं, अब बस घर चलना है। बहुत समय हो गया ये काल चक्र घूमते घूमते 5,000 साल का की यात्रा कर ली, अब बहुत हो गया, अब चलो घर चलो। इसीलिए अभी आप देखते हैं दुनिया में होलसेल में मौत का प्रोग्राम शुरू हो गया है। एक ही भूकंप आता है लाखों मर जाते, एक ही सुनामी आती लाखों, अब होलसेल का मौत का प्रोग्राम है और इसको कोई टाल नहीं सकते। इसीलिए कहा समय तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन में सबको घर जाना है। लेकिन ये समय पर जब परमात्मा भी संसार में आते तो सिर्फ 2 बातें कहते हैं, लेकिन अफसोस मनुष्य भी उन 2 बातों को नहीं समझ पाए और इसलिए मनुष्य भी क्या कर रहा है, भगवान को बहुत मानता है, भगवान की नहीं मानता है। जैसे वो धर्म पिताओं ने सिर्फ 2-2 बातों का संदेश दिया, परमात्मा भी सिर्फ 2 बातें कहते। कौन सी? पहली बात यही भगवान कहते हैं, आत्मशुद्धिकरण करो, योगी बनो, पवित्र बनो, बस ये 2 बात कहते हैं। लेकिन अफसोस आज का मनुष्य भी ये 2 बात नहीं समझ पा रहा है। और जब भी ये बात कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे बहन जी सारे लोग पवित्र हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया को चलाने का हमने ठेका थोड़ी लिया है, वो तो ऊपर वाले का है ना, उसको पता है दुनिया कैसे चलानी, हम चिंता क्यों करें। मेरा एक कार्यक्रम था एक शहर में, सप्ताह थी, 7 दिन का, बहुत सुंदर प्रवचन माला चलती रही, काफी लोग, हजारों की मात्रा में लोग आते रहे। अंतिम दिन एक बुजुर्ग भाई खड़े हुए, मैं कुछ सुनाना चाहता हूं। हमने कहा ये स्टेज पर आए, और उसने कहा कि पहली बार मैंने ब्रह्मा कुमारी क्या कहना चाहती है वो सुना और समझा, और मुझे इनकी एक एक बात में सत्य नजर आया कि कितनी सच्चाई उसकी बातों में है। लेकिन आज दिन तक इनके बारे में गलत फहमी जो फैली हुई है, जिस कारण हम उनसे दूर भागते रहे। हमने कहा ऐसी कौन सी गलत फहमी थी जिस कारण आप दूर भागते रहे? तो वो कहने लगे समाज के अंदर ये फैला हुआ है ब्रह्मा कुमारीज के विषय में कि ये भाई बहन बना देती है। आपको भी कहा होगा, वहां जा रहे हो ठीक ठाक वापस आना, है ना। अरे ब्रह्मा कुमारियों को क्या पड़ी है किसी को भाई बहन बनाने की, किसी को भाई बहन नहीं बनाती है। आप सभी मंदिरों में गए हैं, एक प्रार्थना हर एक ने गाई है, कौन सी, तुम मात पिता हम बालक तेरे, सभी ने गाई है ना। क्या सिर्फ भाइयों ने गाई है, बहनों ने कुछ और गाया कि मेरे पति के मात पिता तो मेरे सास ससुर, कभी कहा भगवान को ऐसा? जब आप ये प्रार्थना गा रहे थे तब आप कौन बन गए थे? ये प्रार्थना ब्रह्मा कुमारियों ने सिखाई थी क्या? तो क्यों ब्रह्मा कुमारियों को बदनाम करें? हमने तो ऐसी कोई बात नहीं सिखाई न सुनाई। हम परमात्मा का पैगाम देते हैं, आत्म शुद्धिकरण करो, योगी बनो, पवित्र बनो, करना न करना आपके ऊपर है। लेकिन अभी समय भी संकेत दे रहा है, इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है। समय संकेत कैसे दे रहा है, उस समय के संकेत को तो समझो। चलो ब्रह्मा कुमारी की बातें न समझो, समय क्या कह रहा है। आज नंबर वन पर जो बीमारी चल रही है, कौन सी चल रही है? एड्स जैसी बीमारी जो नंबर वन पर चल रही है, जिसका कोई इलाज नहीं है। समय भी संकेत कर रहा है आत्म संयम को धारण करो। फिर भी अगर व्यक्ति विपरीत दिशा में चलता है तो समय का शिकार बनना स्वाभाविक है, कोई उसको नहीं बचा सकता है। दूसरा संकेत समय का, न्यूज़पेपर तो आप हर रोज पढ़ते हो, एक खबर हर रोज हर एक न्यूज़पेपर में छपती है, कौन सी, कामेशु क्रोधेशु मनुष्य के कृत्य, हर न्यूज़पेपर में छपते हैं। बलात्कार के किस्से हर न्यूज़पेपर में हर रोज छपते हैं, जिसको पढ़ करके मनुष्य क्या कहते हैं, क्या कहते, क्या निकलता है अंदर से, कैसी हैवान्यत है, कैसा राक्षसपना है। अगर ये भोग बल ही सृष्टि की उत्पत्ति का एक कारण होता था तो उसको हैवान्यत, राक्षसपना, कितनी विकृति है, ऐसे शब्द से संबोधित क्यों करते थे, क्यों कहते थे? शास्त्र में भी आता है, रावण जैसा रावण, इतना शक्तिशाली, जो सीता जी को सम्मोहित करके ले आया लेकिन अपने महल में नहीं रख सका, बगीचे में रखना पड़ा। जो रावण इतना शक्तिशाली था, सीता जी को उसके बाद स्पर्श तक नहीं कर सका, सीता जी के पास अपनी आत्मरक्षा के लिए कौन से शस्त्र थे? एक घास का तिनका जो उठा करके सीता जी ने रावण को चैलेंज कर दिया कि इस घास के तिनके से कदम भी आगे बढ़ाए तो जल जाएगा, ऐसी शक्ति है मेरी, कौन सी शक्ति थी उसके पास? 14 साल के ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी, जिस कारण रावण जैसा रावण भी उसको स्पर्श नहीं कर सका, डरता था। भावार्थ ये, आज के समय में ऐसे कई रावण हैं और इतने विकृति के किस्से हर रोज जो सुनने को मिलते हैं, ऐसे समय में आत्मरक्षा का एकमात्र उपाय है पवित्रता की शक्ति, ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति, जिससे रावण जैसा रावण कोई शक्तिशाली आ जाए वो भी स्पर्श नहीं कर सकता है। कई लोग हमें कहते हैं ऐसे समय में भगवान क्यों नहीं बचाता है? भगवान बचाना चाहता है इसलिए कह रहा है, क्योंकि परमात्मा को कहा जाता है परम पवित्र। परमात्मा की शक्ति की या परमात्मा की मदद को स्वीकार करने की पात्रता चाहिए। वो परम पवित्र अगर मदद देता भी है और पात्रता न हो, जैसे दुनिया में कहा जाता शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही रहता है, अगर ऑर्डिनरी बर्तन होता है और शेरनी का दूध उसमें डाला जाए तो फट जाता, बर्तन फट जाता है। इस तरह परम पवित्र परमात्मा की मदद को स्वीकार करने की अगर पात्रता न हो, नष्ट हो जाओगे। भगवान मदद करना चाहता है, इसीलिए कहते हैं योगी बनो, पवित्र बनो। यही आत्मरक्षा का साधन है, करना न करना आपके ऊपर है। फिर भगवान को दोष नहीं देना कि भगवान आपने जब इतना ज्ञान बताया तो ये भी बता देते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, हम कर सकते थे। लेकिन तब लोग पूछते हैं फिर ये दुनिया कैसे चलेगी। दुनिया को चलाने का पूरा प्लानिंग ईश्वर के पास है कि जो आने वाला समय है सतयुग का, वो कैसे चलेगा। आज से 2000 साल पहले की बात है कि जीसस का जन्म कैसे हुआ। अगर एक वर्जिन मेरी, कुमारी मेरी, बिना किसी भोग बल के जीसस को जन्म दे सकती है, उसको तो किसी ने भ्रष्टाचार नहीं कहा। आज भी मदर मेरी के रूप में उसको पूछते हैं। 2000 साल पहले की बात है। हमारे शास्त्रों में ये बात आती है कि पांडव और कौरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मंत्रों के बल से। यानी संसार में एक समय ऐसा भी था जब मंत्रों के बल से उत्पत्ति होती थी। पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, दृष्टि के बल से उत्पत्ति हुई थी। श्री कृष्ण की उत्पत्ति कैसे हुई थी, योगेश्वर जिसको कहते योग बल से हुई थी। यानी संसार के अंदर उत्पत्ति का रहस्य समय प्रति समय बदलता रहा है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। परमात्मा के पास पूरा प्लानिंग है कि ये संसार को कैसे चलाना है। हर वक्त कोई ये भोग बल से उत्पत्ति नहीं है हुई है। ये तो कलयुग के अंदर जब ताकत नहीं रही तो लोगों ने भोग बल को एक माध्यम बना दिया, और इसी भोग बल के कारण आज संसार में इतनी विकृतियां आ गई है, हैवान्यता आ गई है। आने वाले समय में, अभी तो विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करने लगा है कि नारी अपने आप में संपूर्ण है, उसको कोई भोग बल की भी जरूरत नहीं। वो अपने शरीर में ही उस बीज को भी तैयार कर लेती है, इतनी शक्ति है एक नारी के अंदर। और इसी तरह जब भगवान ने आदेश दिया तब कई मनुष्य पूछते क्या सबूत है कि पवित्र विधि से भी ये संसार चल सकता है। भगवान जानते थे कि संसार के अंदर मनुष्य हर बार सबूत जरूर मांगेंगे, इसीलिए आज भी उसने संसार के अंदर एक पक्षी को रखा है जो पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है, मोर का पक्षी। आज भी पवित्र विधि से उत्पत्ति होती है, इसलिए उसको पवित्र पक्षी कहा गया। श्री कृष्ण ने जिसका पंख अपने ताज में सुशोभित किया, ये कोई डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया गया है। श्री कृष्ण जितनी परम पवित्र आत्मा है, ये पक्षी भी पूरे 5000 साल पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है। कलयुग जैसे कलयुग में भी पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है, इसीलिए श्री कृष्ण ने इस पक्षी को सम्मानित किया है, अपने मुकुट के अंदर उसको स्थान दे करके उसका सम्मान किया है। इसलिए कहा कि परमात्मा के इस संसार को चलाने की विधि पूरी प्लानिंग अपनी तरह से है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब किस्मत आपके हाथ में, किस्मत, किस्मत माना, अब किसकी मत पर चलेंगे। यहां आपको आने के लिए ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने कई बार निमंत्रण दिए होंगे, हर बार आपने क्या कहा था, बहन जी ऊपर वाले की मर्जी होंगी तो पहुंच जाएंगे। अभी जो आए हैं किसकी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से या ऊपर वाले की मर्जी से आए, ऊपर वाले की मर्जी से ना। अब यहां से जाएंगे तो किसकी मर्जी पर चलेंगे, ऊपर वाले की या अपनी मर्जी पर चलेंगे? नहीं, अब आपकी मर्जी होगी। भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया, अब दो राह पे लाकर आपको खड़ा किया है। एक राह जो सतयुग की ओर जाने वाली है, दूसरी राह जो समय का शिकार बनने वाली है। अब किस राह पर चलना है ये आपकी मर्जी होगी। फिर भगवान को दोष नहीं देना कि हे प्रभु, हमें बताता तो था, हम चलते थे उस मत पर, इसलिए कहा किस्मत आपके हाथ में है। अब किस मत पर चलना है ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि आप भाग्यशाली आत्माएं हो। क्यों भाग्यशाली कहूंगी? अंत में एक कहानी सुनाना चाहती हूं कि एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए और भगवान एक डायरी देख रहे थे। नारद जी ने जब देखा तो भगवान से पूछा, भगवान ये डायरी कैसी है? तो भगवान ने कहा, ये मेरी खास डायरी है। अच्छा, ये खास डायरी में क्या लिखा है? खास बातें लिखी होगी। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, इसमें कुछ नाम लिखे हैं। नारद जी को बड़ी जिज्ञासा हुई, इसमें किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा, इसमें उनके नाम लिखे हैं जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं। नारद जी बड़े खुश हो गए, भगवान मेरा नाम तो सबसे पहला नंबर होगा, मेरे जितना तो कोई आपको याद नहीं करता है। भगवान ने भी मुस्कुराकर कहा, तेरा नाम सबसे पहला नंबर, तेरे जितना तो कोई मुझे याद नहीं करता है। फिर भी नारद जी को तसल्ली नहीं हुई, कहा मैं डायरी देख सकता? देख लो। देखा, खुद का नाम सबसे पहला नंबर था, बड़ा खुश हुआ, आगे देखने लगा किस किस का नाम भगवान ने लिखा है। ढूंढने लगा, इसमें हनुमान जी का नाम कहाँ है? तो देखा सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब नारद जी का तो काम था जलाना डायरी, भगवान को दी, ढूंढने निकले हनुमान जी को। तो ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, देखा कि हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का नाम ले रहे हैं। वहां पहुंच करके नारद जी ने कहा, ये सब ढोंग बंद करो। कहा क्यों? अरे भगवान की मैं खास डायरी देखकर आया हूँ जिसमें भगवान ने उनके नाम लिखे थे जो भक्त उनको बहुत याद करते हैं, और तुम्हारा नाम तो था ही नहीं सारी डायरी में। अब हनुमान जी कोई जलने वालों में से थोड़ी थे। उसने कहा, मैं डायरी में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी याद करता हूँ, मैं उसके दिल में रहता हूँ। नारद जी क्या कहते, वहां से चले। फिर घूमते घूमते एक दिन भगवान के पास पहुंच गए तो भगवान एक छोटी सी डायरी देख रहे थे। नारद जी ने देखा डायरी अलग लग रही है, कहा भगवान ये डायरी तो अलग है। तो कहा, ये डायरी मेरी पर्सनल डायरी है। तो पर्सनल डायरी में क्या लिखा है? तो भगवान ने कहा, इसमें भी कुछ नाम लिखे हैं। किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा, इसमें उनके नाम लिखे हैं जिनको मैं बहुत याद करता। तो कहा कि मैं डायरी देख सकता हूँ? कहा देख लो। तो देखा कि हनुमान जी का नाम सबसे पहला नंबर था और सारी डायरी में नारद जी का नाम ही नहीं था। यानी भाग्यशाली कौन? जो भगवान को याद करे वो, या जिसको भगवान याद करे वो? जिसको भगवान याद करे वो। आने वाले यहाँ बहुत थे, लिस्ट के हिसाब से कई लोगों को मना किया गया, लेकिन आप में से कई लोग कैंसल भी हो गए और आप में से कई ऐसे भी होंगे जो दूसरे के नाम पर यहाँ पहुंच गए हैं। इसीलिए कहा, भगवान ने याद किया और आप यहाँ पहुंच गए तो भाग्यशाली हुए ना, भाग्यशाली। आप लोगों का नाम कौन सी डायरी में है पता है ना? पर्सनल डायरी में नाम है, तभी आप यहाँ पहुंच सके। जिसका नाम पर्सनल डायरी में नहीं था वो यहाँ नहीं पहुंच पाए, लास्ट मोमेंट कोई काम आ गया, कैंसिल हो गए, और आपके पास लास्ट मोमेंट किसी ने कहा तो भी आप पहुंच गए, अपना सारा एडजस्टमेंट करके यहाँ पहुंच गए, तो भाग्यशाली हुए कि नहीं हुए? लेकिन अब यहाँ से जाने के बाद वो नारद जी वाला काम नहीं करना, ये जिसका कैंसल हो गया उसको कहो भाई तुम्हारा तो नाम था ही नहीं लिस्ट में, हा? तुम तो भगवान को खाली याद करते हो, भगवान तो तुझे याद ही नहीं करता है, ऐसे नारद वाला काम नहीं करना। लेकिन दूसरे ग्रुप में या कोई भी और ऐसे प्रोग्राम में आप उनको यहाँ तक आ सके ऐसी उनको भी सहयोग दे करके उसको मदद देना ताकि यहाँ तक पहुँच सके। इसलिए कहा भाग्यशाली हो लेकिन अब किस्मत आपके हाथ में, ठीक है। तो ये है काल चक्र का गुह्य रहस्य, परिवर्तन का समय है। भगवान अधर्म का नाश सद्धर्म की स्थापना करने आया है और इसीलिए उसको उसका पैगाम यही है, योगी बनो पवित्र बनो, करना न करना आपके ऊपर है। जो भगवान के मददगार बनते हैं वो अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, समय की पुकार ही है परिवर्तन, ठीक है। ओम शांति। 2 मिनट परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे।
पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। अपनी आँखों को रखो अमृत विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँखों को अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार, तुम हो के निर्विकार सदका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो।